नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की तीसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पत्री का मुख्य उद्देश्य है सत्य में चलना, जिसके लेखक स्वयं यूहन्ना ही हैं। तो आइए श्रोता, आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से तीसरा यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने तीसरा यूहन्ना की पत्री एक अध्याय उसके एक से आठ पद तक का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए नौ और दस पद को देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने रेडियो के माध्यम से, तो प्रभु जी आप उनके जीवन में कार्य करें, उनसे बोले और बातचीत करें, ताकि उनका जीवन इस वचन के आधार पर चलने वाला जीवन बन जाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें, अपने प्रेम डर भय में उन्हें बढ़ाएं, आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे थे कि प्रचारक और उपदेशक जब यूहन्ना से भेंट करते थे, तब वे गयूस के प्रेम और मसीह आचरण की प्रशंसा करके कहते थे कि वह प्रचारकों के लिए एक महान प्रोत्साहन का कारण है। वह उन्हें अपने घर में ठहराता है, और जब वे प्रस्थान करते हैं, तब वह उनके लिए यात्रा का भी प्रबंध करता है। परंतु वे उसकी एक विशेषता का वर्णन करना नहीं भूलते थे कि पहले वह परख करके देखता है कि प्रचारक वास्तव में परमेश्वर का वचन सुना रहा है या कुछ और बता रहा है, और प्रभु यीशु को परमेश्वर मानता है या नहीं। उसकी प्रशंसा सुनकर यूहन्ना अति आनंदित होता था, क्योंकि गयूस यूहन्ना के द्वारा ही विश्वास में आया था। तो आइए हम अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, दियुत्रेफस जो स्वयं को बड़ा समझने वाला है। गयूस आरंभिक कलीसिया का एक सर्वोत्तम विश्वासी था। आपके विचार में आरंभिक कलीसिया में सभी गयूस के समान होंगे, परंतु मुझे दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि सब जन गयूस के समान नहीं थे। जी हाँ, अब हम और एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं जिसका नाम है दियुत्रेफेस। दियुत्रेफेस की चर्चा सुनेंगे जिसके विषय में यूहन्ना कहता है। तीसरा यूहन्ना की पत्री एक अध्याय उसके 9 पद में यहां पर लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रेफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यूहन्ना ने नए नियम के 5 ग्रंथ लिखे हैं, जैसा कि मूसा ने पुराने नियम के 5 ग्रंथ लिखे थे। यूहन्ना की 5 पुस्तकें हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, प्रकाशित वाक्य, पहला यूहन्ना की पत्री, दूसरा यूहन्ना की पत्री और तब तीसरा यूहन्ना की पत्री। यदि यह सच है कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखने के बाद अपनी पत्रियां लिखी, तो यह तीसरी पत्री अंतिम पुस्तक है, क्योंकि यह पत्री प्रथम शताब्दी के अंत में लिखी गई थी। उस समय अनेक अच्छे विश्वासी कलीसिया में थे जो सत्य का आचरण करते थे। अब हम सोचते होंगे कि उनका व्यवहार कैसा होगा, क्या वे सब सदाचार के शिरोमणि थे, क्या वे सब परमेश्वर के महान जन थे, क्या वे प्रभु यीशु के सुयोग्य अनुयायी थे। उनमें गयूस की तो हमने बात सुनी है और हमने देखा भी है, वह एक ईश्वर भक्त, साहसी, विशिष्ट जन जो परमेश्वर की बातों पर अटल था। परंतु वहां दियुत्रेफेस भी था, वह गयूस का बिल्कुल विपरीत था। उसकी विशेषता थी कि वह बड़ा बनना चाहता था। गयुस मन को खुश कर देता था, परंतु वहां एक व्यक्ति है, दियुत्रेफेस जैसे भी कुछ लोग होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोग आज भी आपके सामने होंगे। वह गयुस का बिल्कुल ही विपरीत चरित्र था। वह अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहता था और ऐसा प्रतीत होता है कि वह यूहन्ना की भी आलोचना करता था। यूहन्ना ने इस कलीसिया को लिखा कि वह कुछ विश्वासियों को ग्रहण करे, जिनमें एक विशिष्ट प्रचारक भी था, परमेश्वर का भक्त। उसका नाम दिमेत्रियुस था। दियुत्रेफेस उसे भी ग्रहण नहीं करता था। मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये नाम कुछ एक जैसे लगते हैं, तो आप संदेह में ना रहें। जो व्यक्ति बड़ा बनना चाहता था उसका नाम है दियुत्रेफेस, और दूसरा प्रचारक जो अच्छा व्यक्ति है जिसका नाम है दिमेत्रियुस। दियुत्रेफेस उसे भी ग्रहण नहीं करता था। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये आरंभिक विश्वासी अतिथि सत्कार में बहुत आगे थे। पहला पत्रस की पत्री 4:9 में पत्रस यही कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। और तब हम देखते हैं 1 तीमुथियुस की पत्री 5:9-10 में, रोमियो की पत्री 12:13 में, और तीतुस की पत्री 1:8 में पौलुस भी यही आग्रह करता है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि दियुत्रेफेस अपनी कलीसिया में प्रचारक था या कलीसिया का सदस्य था, परंतु वह यूहन्ना द्वारा भेजे गए विश्वासियों के लिए भी अपने घर के द्वार नहीं खोलता था। वह चाहता था कि उसी की इच्छा पूरी हो, या वह किसी के काम को नष्ट करे। वह परिणाम की चिंता किए बिना अपनी मन की इच्छा पूरी करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी कई परमेश्वर के दास ऐसे विश्वासियों के घर में जाते हैं। जब वे जाते हैं तो वहां उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है, तपती धूप में उन्हें वापस भेज दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है, परंतु मैं यही समझता हूं कि वे अपनी मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, 8 में यूहन्ना कहता है, इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। मैं कहता हूं कि परमेश्वर की संतान के लिए अनिवार्य है कि वह वचन के प्रचारकों को सहयोग दे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर की संतान के लिए अनिवार्य है कि वह वचन के प्रचारकों को सहयोग दे। यदि आपके निकट ऐसा प्रचारक है जिसे आप जानते हैं, आप उसे निश्चय ही सहयोग दें, ताकि परमेश्वर के वचन की सेवा अधिकाई से होने पाए। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि दियुत्रेफेस अत्यधिक अभिमानी था। उसमें महत्वाकांक्षा की अति थी। वह घमंडी था। वह गुब्बारे के समान फूला हुआ था। वह अपनी महिमा करवाना चाहता था। यूहन्ना उस पर 5 दोष लगाता है। तो आइए हम देखें। 1 दोष है, वह कलीसिया में बड़ा स्थान चाहता था। 2, उसने यूहन्ना का भी मान अर्थात सम्मान नहीं रखा। 3, उसने यूहन्ना की बुराई की। 4, उसने प्रचारकों को ग्रहण नहीं किया। संभवतः वही प्रचार करना चाहता था। 5, वह प्रचारकों का सत्कार करने वालों को कलीसिया से निकाल देता था। वह कलीसिया में पहला माननीय व्यवस्थापक होना चाहता था। हाय उन पर जो उसका विरोध करते। मैं उसके पास्टर पर तरस खाता हूं। वह अपने पास्टर को भी दबा करके रखना चाहता होगा, क्योंकि वही अध्यक्षता करना चाहता था। मुझे पूरा विश्वास है कि वह पवित्र आत्मा द्वारा ऊंचा उठाए जाने की अपेक्षा अपने आप ऊंचा उठने का दावा करता होगा। वह आत्मनिर्भर तो था ही, वह आत्म प्रशंसा की भी खोज कर रहा था, जिसका वह दोषी होगा। वह हठीला मनुष्य था, आत्मविश्वासी मनुष्य था, आत्मसंतोषी था। वह सोचता था कि वही एकमात्र प्रचारक एवं शिक्षक है, उससे अन्य किसी भी प्रचारक या शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में उस स्थान को लेना चाहते हैं जिसके लायक वे नहीं हैं, और सिर्फ इसलिए उस स्थान को लेना चाहते हैं ताकि वे अपनी इच्छा को पूरा कर सकें। मेरे मित्रों, आज भी हम इन बातों को देखते हैं। आज कलीसिया में अनेक ऐसे जन हैं जो दियोत्रेफेस के समान कलीसिया को चलाना चाहते हैं। यह मेरा विचार नहीं, वर्षों का अनुभव है। मैं जिस कलीसिया में हूं, मेरी कलीसिया में भी ऐसे लोग थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे उनसे परेशानी नहीं हुई। कभी कभी उनका समूह भी होता है जो अपने बहुमत से कलीसिया की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, और मैंने देखा है कि ऐसों के कारण कलीसियाएं नष्ट हुई हैं। वे बड़े बनने की लालसा करते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि यह परमेश्वर की कलीसिया है। कुछ लोग भले मन से कार्य करना चाहते हैं, परंतु उनमें आगे रहने की लालसा होती है, और मैंने ऐसे जितने भी लोग देखे हैं वे सब के सब अज्ञानी ही निकले हैं। जी हाँ, उन्हें वचन का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं, परंतु वे अपना मुंह खोलना चाहते हैं, और मुझे लज्जा से सिर झुकाना पड़ता है। उनकी बातें बाइबल आधारित नहीं होती। जब उनकी कलीसिया की सदस्यता कम होने लगती है तब वे आश्चर्य करते हैं। कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, चुपचाप रहने का प्रयत्न करो। मेरे मित्रों, जब तक हमारे पास परमेश्वर की ओर से कहने के लिए कुछ ना हो, तब तक हमारे लिए कलीसिया में चुप रहना ही अच्छा है, उत्तम है। कुछ विश्वासी कलीसिया में आगे रहना चाहते हैं। कलीसिया में दियोत्रेफेस ही नहीं, सुश्री दिमेत्रियुस भी है। कुछ ऐसे गायक भी हैं जिन्हें कलीसिया में खड़े होकर गाना नहीं गाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उनके गीत आराधना को हानि पहुंचाते हैं। इससे पहले कि आप गीत या कुछ बोलने सामने आए, आपको अपने मन को जांचना चाहिए। जी हाँ, कभी कभी गीत गाने वाला आरंभिक टिप्पणी करता है जो नकली सुनाई पड़ती है, सच नहीं होता है। संदेश तो गीत में ही होता है, अतः गीत गाना ही पर्याप्त है, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह सब कुछ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत चिंता है। एक बार हमारे शहर में सिनेमा की शूटिंग हो रही थी और मैं देखने के लिए गया। वे एक ही दृश्य को 15 बार ले चुके थे जब मैं थक कर बाहर निकल रहा था, परंतु मैंने देखा कि वे अब भी उसी दृश्य पर काम कर रहे थे। मैं सोचने लगा, काश परमेश्वर के जन प्रभु यीशु की महिमा के निमित्त ऐसा कठोर परिश्रम करते। मेरे मित्रों, हमें अपना सर्वोत्तम परमेश्वर के लिए लगाना है। हमें अपने मन को जांचना है, प्रचारकों को भी जांचना है। आप क्यों अगुवाई कर रहे हैं? आप क्यों गीत गा रहे हैं? क्या आप बड़ा बनना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमान्वन के लिए ऐसा कर रहे हैं? निश्चय ही अगुवे की आवश्यकता है, गायक की आवश्यकता है, वचन के शिक्षक की आवश्यकता है, बहुत लोगों की आवश्यकता है। परंतु कुछ भी करने से पहले अपने अपने मन को जांचें, क्योंकि यदि आप में द्यूत्रेफेस का स्वभाव है तो आप कलीसिया को नष्ट कर देंगे। मैं यूं कहूं कि आप नष्ट कर रहे हैं। एक कलीसिया में मैं प्रचार करने के लिए गया, क्योंकि वहां का पादरी नहीं था। घर लौटते समय मेरी पत्नी ने कहा कि उनका अगुआ सामने खड़ा होकर बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। मैंने कहा हाँ, और मैं सोच रहा हूं कि उसके रहते क्या वे वास्तव में किसी पादरी को खोज सकते हैं। वह अगुवाई ही नहीं कर रहा था, वह कलीसिया की हत्या कर रहा था। वहां आराधकों की संख्या बहुत कम थी। मैं वहां आने वाले पास्टर पर तरस खा रहा था, क्योंकि इस व्यक्ति के रहते वह बहुत दुख उठाएगा। मेरे मित्रों, अब यूहन्ना कहता है कि वह समस्या का समाधान करेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं तीसरा यूहन्ना की पत्री उसके 10 पद को। लिखा है, इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। लिखा है, इसलिए जब मैं आऊंगा। पत्री के अंत में हम देखेंगे कि यूहन्ना आना चाहता है और वह आता है, परंतु यदि वह ना आ पाया, कुछ ऐसा हो जाए कि उसे यात्रा निरस्त करना पड़े, उनकी मन की इच्छा है कि वह आए। लिखा है, उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा। मसीही विश्वास में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सत्य, और सत्य प्रेम के द्वारा प्रकट होता है। जी हाँ, यह अति सरल एवं अति महत्वपूर्ण है। द्यूत्रेफेस बड़ा बनने की लालसा करता था, जो वास्तव में शरीर की अभिलाषा है। आत्मा का फल दीनता है। दीनता का अर्थ दुर्बलता या कायरता नहीं है। किसी ने कहा है, शांत रहना सुनहरा है, परंतु कभी कभी वह पीला होता है। यह बड़ी ही बुरी बात है कि द्यूत्रेफेस के विरुद्ध खड़ा होने वाला कोई नहीं था। मूसा को दीन कहा गया है, परंतु जब उसने इसराइल के समक्ष भाषण दिया तब वह हमारी दीनता की परिभाषा में कहीं नहीं था। उसने परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार के साथ भाषण दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को विनम्र और मन का दीन कहा गया है, परंतु उसने मंदिर से व्यापारियों को खदेड़कर बाहर निकाला था। इस विषय में प्रायः सब चुप रहते हैं। यदि ऐसे व्यवहार को आप देखेंगे तो कलीसिया को हानि पहुंचाती है। यदि कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो अभी भी कलीसिया को हानि पहुंचाती है, तो किसी न किसी को खड़े होकर उससे कहना चाहिए, भाई साहब, आपका यह व्यवहार कलीसिया को हानि पहुंचा रहा है। आप बड़े बनना चाहते हैं तो कृपया आप शांति से बैठ जाएं। आप दीन बनना सीखें और दूसरों को बोलने का अवसर दें। यूहन्ना कहता है, जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा। दियोत्रेफेस का व्यवहार किसी भी प्रकार से विश्वासी की पहचान नहीं था, उसमें सत्य नहीं था। जी हां, आज भी कलिसिया में बहुत सारे दियोत्रेफेस बैठे हुए हैं जिनमें सत्य नहीं है। वे आते तो हैं परंतु सत्यता को नहीं जानते। आज मुझे और आपको इस वचन के प्रकाशन में जांचने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है। क्या आज मैं दियोत्रेफेस की तरह तो नहीं हूं जो मैं बड़ा बनना चाहता हूं? वचन का ज्ञान मुझ में नहीं है और मैं कलीसिया के लिए हानि अर्थात नष्ट का कारण बन रहा हूं? यदि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में हैं, तो मेरे मित्रों आज समय है कि हम इससे दूर हटें, अपने जीवन को प्रभु के निकटता में लाएं, उससे मांगे कि वह मुझे दीन बनाए। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
बेबसी के हालातों में खो न जाऊं, ऐ मेरे यीशु, तन और मन की कमजोरी से थक न जाऊं, ऐ मेरे यीशु, तू ही मेरी जान, मन में है तू, तू ही मेरी जान, दिल में है तू, तू ही मेरी जिंदगी की आरज़ू है, तू ही मेरी जान, मन में है तू, तू ही मेरी जान, दिल में है तू, तू ही मेरी जिंदगी की आरज़ू है। जब तक ये सांसें रहेंगी तेरे ही गीत गाते रहेंगे, तू ही मेरी जिंदगी का राग है। जब तक ये सांसें रहेंगी तेरे ही गीत गाते रहेंगे, तू ही मेरी जिंदगी का राग है। तू ही मेरी जान, मन में है तू, तू ही मेरी जान, दिल में है तू, तू ही मेरी जिंदगी की आरजू है। तू ही मेरी जान, मन में है तू, तू ही मेरी जान, दिल में है तू, तू ही मेरी जिंदगी की आरजू है।